जय राधा माधव जया कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जया ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जया ब्रज जन रंजन जया यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जया कुंज बिहारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल जया प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्ध डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधिका रमन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 50 अध्याय का नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद। न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयो व्यवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष ससात्वतां पतिः। न यस्य साक्षान् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयो व्यवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष ससात्वतां पतिः। न यस्य साक्षान् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयो व्यवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष ससात्वतां पतिः।
देवियां
शब्दार्थ बोलिए ना नहीं यस जिसका साक्षात प्रत्यक्ष भवो शिवजी पद्मज ब्रह्मा कमल से उत्पन्न आदि भी उनके तथा अन्यों के द्वारा भी रूपम रूप धिया ध्यान के द्वारा भी वस्तुतया मूल रूप से उपवर्णितम वर्णित तथा अनुभूत मौनेन समाधि या गहन ध्यान द्वारा भक्त्या भक्ति द्वारा उपशमेन त्याग द्वारा पूजिता पूजित प्रसीदताम प्रसन्न हो एषः यह सः वह सात्वताम महान भक्तों के पति ही स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन ध्यान भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तो इस श्लोक को समझेंगे। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्द क्या हैं? इस श्लोक के शब्द क्या हैं? न यस्य साक्षात भव पद्मजादि भी। तो जिनका साक्षात, साक्षात का मतलब तत्व है ना, और जो रूपम आया है साक्षात रूपम है ना, तो जिनका जो है साक्षात रूप या साक्षात तत्व है ना, भाव पद्मजादि भी, भाव का मतलब है कौन, शिव जी और पद्मज, पद्म से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी है? तो शिव और ब्रह्मा जी है? के द्वारा भी है ना, पद्मजादि भी रूपम धिया, धिया का मतलब बुद्धि के द्वारा या ध्यान के द्वारा वस्तुतया उपवर्णितम, वस्तुतया माने वास्तविक रूप में उपवर्णितम मतलब जाना गया या वर्णित किया गया नहीं है ना। साक्षात का मतलब यहाँ ब्रह्मा और शिव के लिए भी हो सकता है, साक्षात, साक्षात शब्द का प्रयोग इनके लिए भी हो सकता है और साक्षात शब्द का प्रयोग रूपम के लिए भी हो सकता है, लेकिन नयस्य साक्षात रूपम जिनका साक्षात रूप मतलब नहीं जाना गया, किनके द्वारा, ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा भी नहीं जाना गया, या साक्षात ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा जिनका रूप नहीं जाना गया, रूप का मतलब तत्व, रूप का मतलब तत्व भी है और रूप का मतलब उनके विचार, जिनके विचार या जिनकी मनोभावना मनोवृत्ति ये सब रूप के अंदर आ जाता है, तो जिनके मनोवृत्ति या जिनके भाव को साक्षात ब्रह्मा और शिव भी अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सके, उपवर्णित माने नहीं वर्णित हुआ या नहीं जाना गया है ना। मौने ने भक्तियों पर समय ने पूजिता, तो इसलिए हम कैसे जान सकते हैं, तो नारद जी अपनी बात बोल रहे हैं, नारद जी ये बात युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे हैं ना, तो नारद जी क्या कह रहे हैं, मौने ने भक्त्या उपशमे ने पूजिता, इसलिए हम तो ये प्रयास छोड़ दें कि अपने बुद्धि से जानने का प्रयास करें भगवान को, तो वो उससे पूजित नहीं होते हैं और ना कोई जान सकता है, क्योंकि अगर उनकी पूजा नहीं होगी वो प्रसन्न नहीं होंगे तो आप नहीं जान सकते किसी विधि के द्वारा। तो ब्रह्मा और शिव अपनी बुद्धि के द्वारा या अपने चिंतन के द्वारा, धिया धिया का मतलब है वस्तुतया उपवर्णितम, मतलब नहीं जान सके, तो अपनी बुद्धि अपने ध्यान अपने चिंतन के द्वारा जब शिव ब्रह्मा भी नहीं जान सके तो हम फिर क्यों प्रयास करें इस मामले में, है ना। तो मौने ने भक्त्या उपशमे ने पूजिता, इसलिए हम तो मौन रहें, ज़्यादा अच्छे है कि हम मौन के द्वारा ही उनकी पूजा करें और वो पूजित होंगे, कि हम ज़्यादा बातें ना करें, अपना ज़्यादा चतुराई ना दिखाएं, अपनी विद्वत्ता ना दिखाएं। मौने ने और भक्त्या, और भक्ति का मतलब समर्पण, हम जो है चुप हो जाएं और समर्पित हो जाएं, और उपशमन है, उपशमन का मतलब त्याग करें, भोगों का त्याग करें, इन तीन चीज़ों से वो अगर पूजित हो जाएं तो प्रसीदताम, तो प्रसन्न हो मेरे ऊपर। तो नारद जी कहते हैं कि तो वो इस बात से है कि वह प्रसन्न हो, सत्वताम पति, वे महान भक्तों के स्वामी हैं। सात्वत का मतलब महान भक्त, महान भक्तों के स्वामी। सात्वत का मतलब यादव भी, यदुवंशी, यदुवंशियों में सात्वत वंशी एक अलग उसकी जो है एक वर्ग है सात्वतवंशी। तो सात्वताम से यानी यादवों के स्वामी, तो वे जो है हमारे ऊपर प्रसन्न हो, है ना। तो नारद जी इस बात को जो कह रहे हैं, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं तो भी वे अचिंत बने रहते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, विभिन्न विधियों से करते हैं परम सत्य की खोज। विभिन्न विधियों का मतलब क्या है, आजकल भी सत्य की खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो अपने अपने विभिन्न विधियाँ मतलब निरीक्षण करते हैं या खुदाई करते हैं, है ना, और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब जो है यांत्रिक विधियों के द्वारा भी खोज करते हैं, कई तरह की मशीनें बनाई हैं टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से विभिन्न विधियों से परम सत्य की खोज करते हैं, भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज करते हैं परंतु तो भी अचिंत्य बने रहते हैं, कोई स्पष्ट निर्णय निश्चित निर्णय नहीं निकलता परम सत्य के बारे में, निश्चित निर्णय नहीं निकलता, है ना। और वो मतलब अपने सिद्धांत निकालते हैं, बिग बैंग थ्योरी, एक बड़ा विस्फोट हुआ उसी से ये सब बन गया मतलब परम सत्य के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, और वो क्या मानते हैं कि परम सत्य शून्य है, निराकार है, और ये जो जगत है ये एक विस्फोट के द्वारा बन गया। और विस्फोट भी कैसे हुआ, किसने किया, है ना, अपने आप हो गया विस्फोट विस्फोट भी अपने आप हो गया, है ना, और ये सब बन गया। पहले एक बहुत बड़ा पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ तो सब बन गया, हम लोग भी पैदा हो गए उसी विस्फोट के द्वारा, हम लोग भी पैदा हो गए तो इस तरह से अनेक चिंतक विचार, जब शिव और ब्रह्मा तक अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। वैसे शिवजी और ब्रह्मा जी तो महाभागवत हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अगर वो मतलब उस भक्ति की विधि को छोड़ करके अगर मान लो अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा जानना चाहें तो वे नहीं जान सकते हैं, तो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं ये क्या करेंगे, ये कैसे जान सकते हैं। शंकर ब्रह्मा के पास कितनी शक्ति है जानने की, समझने की, देखने की, कितनी शक्ति है शंकर ब्रह्मा के पास, तो वे भी अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी बुद्धि अपने चिंतन के द्वारा नहीं जान सके। रूपम धिया वस्तुतया उपवर्णितम, वस्तुतया माने वास्तविक रूप से वो भी नहीं उपवर्णित कर पाए, वो रूप जिनका रूप उपवर्णित नहीं हुआ, है ना, सही सही वर्णित नहीं हुआ, सही सही निश्चित नहीं हुआ जिनके द्वारा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तो भी अचिंत बने रहते हैं, किंतु पांडवों गोपियों गोपों माता यशोदा नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, इनको जो है कुछ नहीं करना पड़ता इन सब विधियों का। किनके लिए प्रभुपाद कहते हैं, पांडवों और गोपियों और गोपों माता यशोदा, नंद महाराज और वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान की परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे इन सबों के साथ सुख दुख की सभी स्थितियों में रहते हैं। वे मतलब कृष्ण इन सबके साथ सुख दुख की स्थिति में रहते हैं, तो कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, है ना। तो कृष्ण उनको मतलब ऐसे मिल गए है? जैसे अंधे को जो है कहते हैं ना, अंधे के हाथ बटेरे लग जाए, तो कृष्ण को इस तरह से मिल गए, है ना। तो कृष्ण इनके लिए इतना आसान हो गए, इनको प्राप्त हो गए है? इनके लिए, और सुख दुख में हमेशा ये कृष्ण के साथ है या कृष्ण इनके साथ हैं, है ना। तो ये भी जो है तत्व कृष्ण का कोई नहीं जान सकता कि किसको जो है वे ऐसे प्राप्त हो जाएं। तो यहां पर ये भी भाव है कि न ऐसा साक्षात भव पद्म, शंकर ब्रह्मा भी नहीं सोच सकते, इनके भाग्य की गणना नहीं कर सकते, कितना सौभाग्य पांडवों के, गोपियों के, नंद यशोदा के, अचिंत्य इनका भाग्य भी अचिंत है कि कृष्ण इनको इस तरह से प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर ये भी मतलब है कि शंकर ब्रह्मा भी जो है अंदाजा नहीं लगा सकते इनके पुण्यों का या इनके सौभाग्य का, है ना। क्योंकि पिछले श्लोक में नारद जी ने बताया था कि आपके यही कृष्ण हैं जो परम ब्रह्म हैं, अचिंत हैं, परम सत्य हैं। ये कृष्ण आपके सात प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो प्रिय, सुहृद और मातुले यानी ममेरे भाई, और आत्मा यानी शरीर आपके शरीर की तरह, अर्हणियो और पूज्य और विधिकृत माने सेवक और गुरु। तो सात प्रकार से आपको ये प्राप्त हो गए हैं, है ना। तो नारद जी बता रहे हैं, नारद जी का ये भाव है युधिष्ठिर महाराज के प्रति, आपको जो है कृष्ण सात प्रकार से आपके साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन शिव और ब्रह्मा के लिए भी जो अचिंत हैं, जिनका तत्व अचिंत है, तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, पांडव लोग कितने भाग्यशाली हैं। तो नारद जी का यहाँ भाव ये है, पिछले श्लोक से अगर इस श्लोक को जोड़ें तो नारद जी का ये भाव है। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से ही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हो। तो अध्यात्मवादी का मतलब कोई व्यक्ति अपने ध्यान अपने चिंतन की विधि से भगवान को जानने का प्रयास करता है, अध्यात्मवादी है, लेकिन भक्त नहीं है। अध्यात्मवादी हैं वो अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। अध्यात्मवादी जैसे आजकल मेटाफिजिक्स एक विषय चला है ना, मेटाफिजिक्स, तो इसमें जो है वो इस तरह की मतलब घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि कैसे होती हैं ऐसी घटनाएं, बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, तो एक मेटाफिजिक्स एक नाम दिया उन्होंने। लेकिन इसमें समर्पण का भाव थोड़ी है, वो अपनी खोजें करते हैं, कई कई घटनाओं में जो है मतलब जब होती हैं ऐसी घटनाएं, आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, तो अपनी अटकलबाजी से जो है समझाने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, तो समर्पण का भाव नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए, शुद्ध भक्त एक तरफ शुद्ध भक्त हैं जो क्या करते हैं, समर्पण करते हैं कृष्ण को, समर्पण करते हैं और कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे अध्यात्मवादी हैं जो समर्पण नहीं करते हैं, खोज करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। तो उनके लिए कृष्ण का जो तत्व है वो अचिंत ही बना रहता है, वो परम सत्य कैसा है कैसा नहीं है उनको जो है कुछ भी अंदाजा नहीं लगता परम सत्य के बारे में। तो प्रभुपाल लिखते हैं, इसीलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादी एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से ही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हो। नारद जी अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे मौन के द्वारा, भक्ति के द्वारा और त्याग के द्वारा पूजित हो करके वे भगवान प्रसन्न हो। तो नारद जी भी अपना सौभाग्य नहीं मानते इतना, कितना, जितना पांडवों का है। राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था, और शिशुपाल जीवन भर कृष्ण से शत्रुता करता रहा और सभा के बीच में भी उसने कृष्ण की निंदा की और कृष्ण के द्वारा मारा गया और उसके शरीर की ज्योति निकली और कृष्ण के चरणों में समा गई। तो युधिष्ठिर महाराज भी चकित थे कि इसको इतनी अच्छी गति क्यों मिली, इसको तो दंड मिलना चाहिए, इसको तो नरक मिलना चाहिए और जीवन काल में भी इसकी जीभ में कोढ़ हो जाना चाहिए था। शत्रु न जातो जिह्वायाम नांधम प्राविशत्तमा, इसकी जीभ में कोढ़ नहीं हुआ कि कृष्ण की निंदा करता था, खूब मुंह खोल करके निंदा करता रहा है? और मरने के बाद इसको जो नरक की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसका क्या रहस्य है? तो फिर नारद जी ने मतलब बताया कि शत्रु भाव से भी कृष्ण को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और उसमें शत्रु भी प्रगाढ़ है, शत्रु भाव शिशुपाल का था। और फिर नारद जी ने बताया कि ये जो है जय विजय नाम के द्वारपाल हैं जो कि तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुए। तो पिछले से पिछले जन्म में यानी तीन जन्मों में जो सबसे पहला जन्म था हिरण्यकश्यप के रूप में ये जो है नरसिंह देव के द्वारा मारा गया था, जिसने जब अपने पुत्र के साथ इसने शत्रुता की थी। तो इस बात पर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया नारद जी से कि अपने पुत्र के साथ शत्रुता कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है और फिर पुत्र भी जो है बड़ा सुशील हो, सदाचारी हो, तो पिता अपने पुत्र के साथ शत्रुता कैसे कर सकता है? तो इस विषय में जो है जब युधिष्ठिर महाराज को जिज्ञासा हुई तो नारद जी ने विस्तार से हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। लेकिन जो घटना थी वो ये थे, ये शिशुपाल का वध हुआ था अभी अभी और जितने भी पूरी पृथ्वी के राजा लोग थे वो सब वहाँ राजसूय यज्ञ में बैठे हुए हैं और उनके बीच में ये जो है मतलब चर्चा चली। तो नारद जी जो है मतलब बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, पांडवों को युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप लोगों का सौभाग्य तो इतना ज़्यादा है कि यही भगवान जो है जिनको हम लोग हम नारद जैसे लोग भी जो है केवल प्रसन्न करते हैं। कैसे? मौन भक्ति और उपशम के द्वारा प्रसन्न करते हैं, है ना? और प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, प्रसन्न करने की प्रार्थना करते हैं कि प्रसन्न होइए, है ना? वे आपके ऊपर इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि सात प्रकार से व्यवहार करते हैं आपके साथ। सात प्रकार का व्यवहार क्या है? प्रिया, सुहृद, मातुले, आत्मा, अर्हणीय, विधिकृत और गुरु। विधिकृत का मतलब सेवा भी करते हैं, सेवक भी हैं और गुरु भी हैं। उनको सेवक बनाओ तो सेवक बन जाते हैं और गुरु बनाओ तो गुरु बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी सेवक को आप अपना गुरु बनाएं या गुरु को अपना सेवक बनाएं, लेकिन भगवान के साथ इतना जो है मतलब आश्चर्य है कि भगवान जो सात प्रकार से आपके साथ व्यवहार करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं या आप कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, इतना सौभाग्य है, है ना? तो आज का जो श्लोक है इसमें नारद जी का ये भाव है, जिसमें जो श्लोक का जो पद्य अनुवाद किया गया है इसको भी आप सुनिए, बड़ा अच्छा है। शंकर ब्रह्मा आदि भी सब निर्णय कर ही ना पाए, सारी बुद्धि का जोर लगा स्वरूप न वर्णित कर पाए, फिर अपने तो बात ही क्या, उनके गुण कैसे गा सकें, मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही हम उन्हें ध्या सकें। हैं भक्तवत्सल प्रभु पूजा हमारी स्वीकार करें, प्रसन्न हो हम पर प्रभु निज पूजा का अधिकार दें। ये जो है हिंदी में भाषांतर हुआ है। तो नारद जी ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों में यानी नारद जैसे हम लोगों में और तुम लोगों में क्या अंतर है, कि भगवान आपके घर में रहते हैं, भगवान आपके घर में रहते हैं, यहाँ तक कि प्रहलाद जी के भी घर में भगवान थोड़ी रहते हैं, है ना? आपके घर में भगवान रहते हैं, और आपके घर में जो है मुनि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग जो है आपके घर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, है ना। प्रहलाद जी के घर में तो नहीं मुनि लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके घर में भगवान है, साक्षात भगवान है, है? और ना उनके साथ में ममेरे भाई की तरह प्रहलाद को भी भगवान जो है ममेरे भाई की तरह नहीं प्राप्त हुए, है ना। और आप लोगों के ऊपर तो भगवान स्वतः प्रसन्न है, स्वतः प्रसन्न है, खुद ही आते हैं, खुद ही बातचीत करते हैं, खुद ही खाते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, साथ साथ हैं, रहते हैं, है ना। तो वैसे हम लोगों के ऊपर तो नहीं है प्रसन्न, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी हों या प्रहलाद जी हों, प्रहलाद जी को भी इस तरह से नहीं प्राप्त हुए। तो हालांकि प्रहलाद जी ऊपर इतनी कृपा की है नरसिंह भगवान ने, है ना, कि सब लोग भी जो है उनको प्रसन्न नहीं कर पाए, और बालक प्रहलाद के ऊपर ही भगवान प्रसन्न हुए, नरसिंह देव प्रसन्न हुए, हैं। लेकिन फिर भी अगर तुलना की जाए तो प्रहलाद से ज़्यादा भाग्य किनका है, पांडवों का है, है ना। तो इतना जो सौभाग्य है वो हमारा भी नहीं है। तो ये जो है भाव है, नारद जी का, है ना। तो प्रभुपाद ने यही विधि हम लोगों को सिखाई कि हम लोग नकल ना करें, हम लोग पांडवों की नकल ना करें, हम अपनी स्थिति में रह करके क्या करें, मौन भक्ति उपशम। तो मौन का मतलब मौन धारण करना नहीं है, भगवान का गुणगान तो करना है, हैं, लेकिन उस मर्यादा के अंदर ही भगवान का गुणगान करना है, हैं, जो विधि बताई गई है हमको, है ना, उससे आगे नहीं हमें करना है, हैं, कि अपने ढंग से कुछ और बोलें, तो उसको भी मौन कहते हैं। वैसे मौन की विधि नहीं है कि भाई मतलब बोलना ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जहाँ कहीं मौन की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि प्रजल्पा भी ना करिए कि व्यर्थ की बातें करिए, या भगवान का वर्णन जो है उतना ना करिए जितना आपने सुना नहीं है परंपरा के द्वारा। तो आप परंपरा का ही अगर वर्णन करते हैं, परंपरा के अनुसार ही अगर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो वो फिर आप नहीं बोल रहे हैं, आप तो मौन हैं, वो तो परंपरा बोल रही है, ठीक है ना। तो इसी को मौन कहते हैं कि मैं तो मौन हूँ, अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वास्तव में नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो मैंने प्रभुपाद की बात को दोहराया तो मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने अपनी बात जोड़ी नहीं, तो इसको मौन कहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद भी यही बोलते थे कि मेरा कुछ अगर गुण है तो यही कि मैंने अपनी बात कुछ नहीं जोड़ी, है चैतन्य महाप्रभु का संदेश आप लोगों को दिया तो मैं तो मौन हूँ, जैसे कि पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, है ना, तो आपको संदेश दे देता है, आपके मित्र की चिट्ठी आपको हाथ में दे देता है, तो वो तो मौन रहा, उसने क्या बोला, उसने चिट्ठी ला करके दे दी। तो प्रभुपाद क्या कहते थे कि साधु और गुरु का काम क्या होता है कि वो संदेश यथावत देना, तो बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहा है, वो तो मौन है, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। फिर भी इसी को बोलना कहा जाता है, अगर असल में अगर बोले हैं तो वही व्यक्ति बोलने वाला है, जो संदेश दे यथावत संदेश दे भगवान का, तो बोलना भी अगर है तो यही है, कीर्तन भी अगर देखा जाए तो यही है, असली कीर्तन यही है कि आपने दोहराया, लेकिन अगर मौन भी अगर कहा जाए तो असली मौन भी यही है कि मैंने कुछ और अन्य बात बोली नहीं। तो इसी को जो है मतलब मौन भी कहा जाता है और भक्ति भी, मौन और भक्ति। तो भक्ति का मतलब बोलना और मौन का मतलब चुप रहना। तो इस मामले में मैं चुप हूँ तो मुझे अपने हिसाब से नहीं कुछ बोलना है, अपने मनोधर्मी की बातें नहीं बोलना है, अपनी कल्पना की बातें नहीं बोलना है, या प्रजल्पा नहीं करना है, है ना। और साथ साथ ये कीर्तन भी है कि मैं जो है गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन शुद्ध संदेश दे रहा हूँ, शुद्ध जो है गुणगान कर रहा हूँ जैसा कि परंपरा के द्वारा आया। तो यही जो है कीर्तन भी है, यही मौन है। मौने ने भक्त्या उपशमे ने पूजिता, और उपशम, उपशम का मतलब है कि भोगों को त्यागना, इंद्रिय तृप्ति को त्यागना, तो ये उपशम है। भगवान के द्वारा जो कुछ दिया जाता है तो उसको भोगना, ये भी जो है मतलब है कि तुम भोगो। तो इसमें ये असली भोग भी है कि हम भोगते भी हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया है प्रसाद के रूप में हम उसको भोगें, है ना। लेकिन उपशम का मतलब ये है, त्यागना भी है, है? कि अपने ढंग से हमें भोगना नहीं, अपने ढंग से अपने तरीके से नहीं भोगना है। लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है उसको हम ग्रहण करना है, तो वो भोगना भी है, हम भोगिए, है ना। जैसे गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ्य सोलभस्व जत्वा शत्रुन् भुङ्क्षु राज्यं समृद्धं। तुम भोगो समृद्ध राज्य, भोगो भुङ्क्षु, भुङ्क्षु माने भोगो, है ना। तो ये भी उपशम है, ये भी त्याग है कि भगवान ने जो दिया है उसको आप जो है ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा त्याग है कि भगवान ने दिया है और वो भोग भी है, आप भोग रहे हैं। तो भगवान की प्रसन्नता से आप कुछ अगर भोगते हैं तो वो असली भोग भी है, है ना, और असली त्याग भी है कि बाकी चीज़ें आप नहीं भोगना चाहते हैं। जो कृष्ण, जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है ऐसा हम भोगना नहीं चाहते हैं, तो वो त्याग भी है ना। तो मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजिता, तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि इन तीन विधियों के द्वारा वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, है ना। तो नारद जी जो है मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक पांडवों की नकल ना करके वो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा और शिव भी अगर अपने शक्ति से, अपनी बुद्धि से अगर जानना चाहें तो उनका तत्व नहीं जान सकते। ब्रह्मा और शिव भी जो है नकल नहीं कर सकते पांडवों की, या पांडवों के सौभाग्य को भी नहीं समझ सकते कि पांडवों का कितना सौभाग्य है, तो फिर हम क्यों नकल करें, फिर हम क्यों नकल करें। तो हम क्या करें, अपनी स्थिति में ही रह करके उनको क्या करें, नमस्कार करें, है ना। तो नमस्कार करें और क्या, मौन और भक्ति और उपशम, इनके द्वारा प्रसीदताम, वो हमारे ऊपर प्रसन्न है। तो हमारी जितनी योग्यता है उसके अनुसार हम जो है उनको इसी प्रकार से प्रसन्न करें, है ना। जो प्राकृत सहजिया लोग होते हैं वो जो है नकल करते हैं, सहजिया संप्रदाय है तो वो जो है नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं, वो उसको आसान ले लेते हैं। शंकर ब्रह्मा तक नकल नहीं करते शंकर ब्रह्मा तक भी नकल नहीं करते गोपी भाव कि, तो वो जो है नकल करते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं, तो उसे थोड़ी प्राप्त होने वाला है, तो वो थोड़ी प्रसन्न होंगे इस तरह से, है ना। वो कैसे प्रसन्न होंगे, हमारी स्थिति कैसी है, हम भगवान से दूर हो गए हैं, हमारा भगवान से कुछ संबंध टूट गया है और हमने भगवान के साथ कुछ ऐसे दुर्व्यवहार किए हैं कि अब जो है गोपी भाव की नकल करने से थोड़ी प्रसन्न होंगे। हमें तो अब विनम्रता का व्यवहार करना होगा और शिष्टाचार के अनुसार उनको नमस्कार करना होगा, है कि नहीं। कोई आपका मित्र है और उसके साथ आपके अच्छे संबंध है, है ना, और मैंने आपका कुछ अपराध किया है और मैं आपको बहुत दुर्व्यवहार किया है, है ना, तो उस मित्र को देख करके मैं भी आपके साथ मित्रता का अगर अनुकरण करूं, नकल करूं, तो आप क्या प्रसन्न होंगे, आप क्या सोचेंगे कि ये तो दुष्ट है, इसने तो मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, अब दिखाता है मित्रता, है ना। तो अब बराबरी के का व्यवहार करके हम जो है उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपराध किए हैं। तो हम अपने अपराधों को स्वीकार करें और हम जो है अब अपनी चतुराई ना दिखाएं, अब हम समर्पण करें, विनम्र हो, तो ये एकमात्र यही विधि है ना प्रसन्न करने की। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो आप भूलेंगे नहीं उसके दुर्व्यवहार को, कि वो जो है वो भूल करके वो भूल जाता है, वो भूल जाता है उसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो आप तो नहीं भूलेंगे और वो चाहता है कि आप भी भूल जाएं और ऐसे ही करो मस्ती लो तो आप तो नहीं प्रसन्न, तो भगवान थोड़ी प्रसन्न होंगे कि हम गोपियों की नकल करें या पांडवों की नकल करें। हमारी भावना अभी भी दूषित है, भगवान के प्रति भी हमारा अभी भी दूषित भाव है, ईर्ष्या का भाव है। तो उसको जो है नाश समझ करके और हम नकल करें, दिखावा करें गोपी भाव की, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आज के श्लोक में भाव क्या है नारद जी का कि मौन भक्ति और उपशम। तो मौन का मतलब क्या है, प्रजल्पना नहीं करना और कृष्ण का जो गुणगान है वो भी अपने ढंग से नहीं करना, जो परंपरा के अनुसार जो आ रहा है उस तरह से वर्णन करना है ना, तो वही मौन है ना। और भक्ति नियमों का पालन करना, भक्ति के नियमों का पालन करना और उपशम और भोगों का त्याग करना, उसके द्वारा वो पूजित होंगे। जैसे पुत्र है तो पिता के साथ संबंध खराब कर लेता है तो पिता तभी प्रसन्न होगा जब वो समर्पण करे और अपने दोषों को स्वीकार करे कि हाँ मैंने गलती की और मैंने आपको छोड़ा और मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तभी पिता प्रसन्न होगा कि नहीं, कि ऐसे ही हाँ ठीक है भूल जाओ सब कुछ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं भुलाया जाता है। पुत्र ने अगर कुछ संबंध खराब किए हैं पिता के साथ में तो उसको जो है सुधारना पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने की जो विधि है उसको अपनाइए। तो हम लोग पांडवों की नकल नहीं कर सकते, गोपियों की नकल नहीं कर सकते, नंद यशोदा की नकल नहीं कर सकते, यहाँ पर ये जो है भाव है नारद जी का। नारद जी इस प्रकार से अपनी स्थिति को जो है बहुत निम्न मान करके उन भगवान को समर्पण कर रहे हैं और भगवान वहीं सामने बैठे, युधिष्ठिर महाराज के पास ही बैठे हैं भगवान और भगवान भी सुन रहे हैं सब तो वो कह रहे हैं प्रसिद्ध ताम एस सातोताम पति, एस माने ये वही सातोताम पति यादवों के पति हैं, ये वही यादवों के पति हैं जो आपके साथ में सात प्रकार के व्यवहार करते हैं, गुरु का व्यवहार करते हैं, सेवक का व्यवहार करते हैं, प्रिय और सुहृद और ममेरे भाई है? सात प्रकार के व्यवहार करते हैं आपके साथ में है? सेवक सेवक हैं, दूत हैं है? अच्छा आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। यहाँ पर ध्यान का मतलब वो मौन का ही भाव है, यहाँ पर मौन मौन और ध्यान एक ही मतलब है। मौन और ध्यान का मतलब कि हम उसी में ही अपने को केंद्रित करें, ध्यान का मतलब उसी चीज में केंद्रित करें जो हमें बताया गया है ना। तो यहाँ पर ध्यान वो ध्यान नहीं है जो भक्ति रहित ध्यान होता है या चिंतन होता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ध्यान का मतलब कि हम अपने को केंद्रित करें केवल इसी विषय में कि हमें क्या आदेश दिया गया है, हम उसका आदेश का पालन करें, उन नियमों का पालन करें, तो वो ध्यान मतलब यहाँ है ना। और कोई? हाँ जी
देखते हैं कि फिलोसफी तो स्पेकुलेशन का स्कोप होता है, अगर वो हम किसी विषय के ऊपर स्पेकुलेट करते हैं जो कि भक्ति में इसका निष्कर्ष भक्ति हो तो वो भी जो है जायज मानी जाती है, लेकिन इसमें फिर गलती भी हो सकती है, परंपरा से अलग भी हो सकते हैं, तो कैसे इसको हम चेक कर सकें ताकि हम
अच्छा प्रश्न है। सब कुछ सुनाई पड़ा ना?
नहीं
सुनाई पड़ा। अच्छा हैंडमैग नहीं गए यहाँ पर? अच्छा तो चलो मैं बोल देता हूँ। इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है। इनका प्रश्न है कि जो हमने गुरु परंपरा के द्वारा सुना है तो ऐसा तो नहीं कि वही शब्द बोलें, हमें तो शब्द बदलने होते हैं और जैसे लोग हमारे सामने हैं उनको समझाने के लिए हमें उनके शब्दों में समझाना पड़ता है वो विषय, तो अपनी तरफ से कुछ दिमाग तो लगाना ही पड़ता है समझाने के लिए, है ना। तो उसमें फिर जो है मतलब गलती होने की संभावना है कि हमने अपनी तरफ से कुछ विचार जोड़ दिए, तो उसको फिर कैसे हम जो है मतलब सुधार करें उसको, है ना। अच्छा प्रश्न है। तो ये होना चाहिए, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है। आप हरे कृष्ण मंत्र का भी जाप कर रहे हैं तो ये भी प्रार्थना है कि हम जो है मतलब हमें सेवा में लगाइए, तो सेवा का मतलब हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं तो उनके अनुसार ही हम बोलें तो हम मतलब सेवक कहलाएंगे, तो मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें ये भी शामिल है। और रोज हम अपने मंदिर में तो प्रार्थना करते ही हैं कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार हम प्रचार कार्य में लगे रहें। अब यहाँ करते हैं आप लोग प्रार्थना करते हैं तो ये जो है मतलब हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो अगर ये प्रार्थना हम करते हैं तो उस विषय को जो है हमने जैसे समझा और हृदयंगम किया, उसका मंथन किया, फिर आप निकालते हैं तो उसी चीज का जो है मंथन आप करते हैं आप निकालते हैं तो वो एक मक्खन की तरह वो निकलता है, तो वो शब्द जो है वो दूसरे शब्द हो सकते हैं कि दूसरे शब्दों में निकले वो, है ना। जैसे दूध का मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं, मक्खन निकलता है, तो उसी प्रकार से आप जो है बहुत ही प्रिय शब्दों में और मधुर शब्दों में वो संदेश आप लोगों को दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगे। तो रोज जैसे सुनना नित्यम भागवत सेवया, रोज आप सुनते हैं, रोज सुनते हैं तो वो आपके अंदर जो है मतलब जाता है, आपके अंदर जाता है, है ना। और फिर वो ही जो है मंथन होकर के जब आप बोलते हैं तो वो किस रूप में निकलता है, एक नए रूप में निकलता है। तो ये जो कथा है वो हमेशा नए रूप में निकलती है, नए नए शब्दों में निकलती है और जो है ये नित्य नवीन रहती है। तो ये उसी प्रकार से है जैसे गाय है वो चारा खाती है, भूसा खाती है, सब कुछ खाती है, है ना, लेकिन फिर जब दूध देती है तो वो दूध जो है सुपाच्य होता है। आप तो चारा और भूसा नहीं खा सकते, घास आप नहीं खा सकते, गाय खाती है, लेकिन है ना। तो सामान्य लोग जो है इन शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं, सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। आप रोज सुनते हैं, आप रोज समझते हैं तो इनको पढ़ करके भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। लेकिन आप रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं इनको, तो आपके मुख से जो है जब यही संदेश निकलेगा तो इतना वो जो है सरल होगा, इतना मधुर होगा कि वो उनको समझ में आएगा, है ना। तो प्रभुपाद ने भी प्रार्थना की थी कृष्ण से कि यदि आप चाहें तो मेरी बात उनको समझ में आ सकती है। तो आप मेरे भी हृदय में बैठे, उनके भी हृदय में बैठे हैं, तो मेरे हृदय से आप जो है ऐसे शब्द निकलवा सकते हैं, मेरे मुख से ऐसे शब्द आप निकलवा सकते हैं कि उनके कानों में घुसेंगे और उनके हृदय में जाएंगे, और उनके हृदय में आप बैठे हैं तो आप उनको समझा देंगे, अंदर से समझाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो प्रार्थना होती है तो इस प्रार्थना के अनुसार हम फिर ज़्यादा समझ पाते हैं। हमने जितना समझा है उसको जब हम समझाते हैं तो फिर हमको भी और वो समझ में आता है, तो समझाने से हमें और भी समझ में आता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। आप दूसरों को समझाते हैं उस विषय को जो समझना चाहते हैं, उनको आप समझाते हैं तो समझाने से आपको और समझ में आता है, आपका ज्ञान और बढ़ता है, है ना। कोई दूसरी चीज़ होती है आप देते हैं बांटते हैं तो ख़त्म हो जाती है आपके पास, लेकिन ये ज्ञान आपका और बढ़ता है, आपकी जो अनुभूतियाँ हैं और बढ़ती हैं, आपको नई नई अनुभूतियाँ होती हैं। तो ये सब जो है मतलब अपनी व्यक्तिगत बात है कि आपको स्वयं अनुभूति होती है इस विषय की और नई नई अनुभूतियाँ होती हैं, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी, इनका अच्छा प्रश्न है कि शंकर और ब्रह्मा का जो भाव है भगवान के प्रति, वो शांत भाव में है या दास भाव भी माना जा सकता है, तो इनमें कोई कमी नहीं है, इनमें कोई कमी नहीं है कि आप कहें कि भाई ये कमी है और ये जो है सख्य भाव में है या वात्सल्य भाव में है, तो वो तो ऊपर हैं, शांत भाव से ऊपर दास भाव और दास भाव से ऊपर सख्य भाव से ऊपर वात्सल्य भाव, ये सब ऊपर तो हैं। लेकिन इनको समझना कि ये ऊपर हैं, ये तो तभी आप समझते हैं जब आप इनसे बाहर निकलते हैं, नहीं जो इनमें हैं, इन रसों में हैं, तो जो व्यक्ति जिस रस में है उसमें उसको इतनी पूर्णता है कि उसका अंत ही नहीं है, इसमें रस का कोई अंत ही नहीं है कि आप कहें कि ये जो है मतलब इसमें है वो तो ऊंचे हैं। भौतिक संसार में तो होता है कि भाई ये मुझसे ज़्यादा धनी है, ये मुझसे ज़्यादा धनी है, लेकिन चाहे शांत रस हो चाहे दास रस हो, इतना रस है कि उसका अंत ही नहीं है और वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है, इसलिए कोई भी रस जो है मतलब अपने आप में कम नहीं है। और जहाँ तक स्थिति की बात है, उनकी ज़्यादा सम्मानित स्थिति है, शिव ब्रह्मा की स्थिति ज़्यादा सम्मानित है, पांडवों की स्थिति से ज़्यादा सम्मानित उनकी स्थिति है, लेकिन ये तो समझने की बात है कि भगवान उनके इतने निकट हैं, शंकर ब्रह्मा को जो है नमस्कार प्रणाम करना होता है उन्हीं भगवान को और पांडव लोग उनको गले से लगाते हैं, शंकर ब्रह्मा की हिम्मत नहीं उनको गले से लगाने की, वो तो प्रणाम ही करते हैं, स्तुति नमस्कार करते हैं, पांडव लोग उनको गले से लगाते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, है? और हंसी मजाक करते हैं, तो वो अलग बात है। तो ये एक अंदर की बात है समझने की कि मतलब ये कितने निकट हैं भगवान की, कितने नंद यशोदा कितने निकट हैं भगवान के, भगवान के कितने निकट हैं, वो छोटे से बच्चे की तरह हैं और आश्रित हैं, उनको माता यशोदा खिलाती हैं सुलाती हैं, लेकिन जहाँ तक शिव ब्रह्मा की स्थिति है तो सम्मान की दृष्टि से वो बहुत ऊपर हैं, है ना। तो वैसे जो है मतलब कोई अंतर नहीं है, रस की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है कि आप कहें कि भाई उनके रस में कुछ कमी है और उनको कुछ लगता है कि भाई इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, तो जिसको प्राप्त करके उससे बड़ा लाभ वो मानता ही नहीं है, आप समझ रहे। तो शांत रस में भी जो भक्त आ जाते हैं तो उसमें भी उनको इतना रस मिलता है कि उससे बढ़कर के उनको कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता, आप समझ रहे ना। तो इतनी पूर्णता है, इतनी पूर्णता है प्रत्येक रस में कि इससे बढ़कर के तो उनको कुछ है ही नहीं। जैसे एक मछली है समुद्र में है तो उसको समुद्र का अंतर ही, वो थोड़ी कह सकती कि मेरा समुद्र छोटा है और दूसरा समुद्र इससे बड़ा हो सकता है क्यों मछली के लिए जो है जिस उस समुद्र का ही जो है लंबाई चौड़ाई वो नहीं अंदाजा नहीं लगा सकती, तो वो क्यों कहे मैं इस छोटे समुद्र में क्यों हूँ, मुझे और बड़ा समुद्र चाहिए। मछली के लिए थोड़े आप समुद्र से बाहर निकलते हैं, है ना, तो कह सकते भाई वो समुद्र और बड़ा है, ये समुद्र छोटा है, वो तो बाहर निकलने की बात है कि बाहर से अध्ययन करें आप। तो जब आप रस से बाहर निकलते हैं तो आप कह सकते हैं ये रस ये ऊंचा है, ये नहीं रस से बाहर नहीं है, वे जो है शांत रस में या दास रस में हैं, स्थित हैं, और इसमें भी एक रस है। वे उनकी स्थिति को ऊंची देख रहे हैं और अपनी स्थिति को नीची देख रहे हैं, और इसमें भी वे जो है मतलब विनम्रता पूर्वक समर्पण कर रहे हैं भगवान को, तो ये भी एक उनका अपना रस है, ठीक है ना। बाहर होते हुए भी वे अपने उस रस में हैं। विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण जब विश्लेषण करते हैं तो वो मतलब आप बाहर निकल करके ही विश्लेषण कर सकते हैं, ये बात तो है ही है, लेकिन तो भी वे जो है अपने रस को नहीं छोड़ रहे हैं, उनका अपना जो रस है वो फिर भी बना हुआ है। कुंती महारानी भी माता यशोदा की स्थिति को समझते हैं कि कितनी ऊंची है। समाम वे मोहयति भीरपियत विभेदी, कि भयभीत जन से भयभीत होता है, वो जो है भयभीत हैं माता यशोदा से। कुंती महारानी जो है यशोदा की नकल नहीं कर रहे हैं, यशोदा की नकल नहीं करना चाहती, लेकिन आश्चर्यचकित होती हैं कि ब्रजवासियों के साथ जो है भगवान कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये आश्चर्य करना भगवान की लीला में, आश्चर्य करना ये भी अपने आप में एक रस है, ठीक है ना। हाँ जी, ये अलग बात है कि कभी वो इच्छा करते हैं और फिर अपने रस में आ जाते हैं, कभी इच्छा करते हैं अपने रस से बाहर निकलते हैं और देखते हैं भाई ये है, इच्छा करते हैं और फिर अपने रस में आ जाते हैं। क्योंकि इस रस का भी अंत नहीं है, जो भी रस आपका है उसका भी कोई अंत नहीं है, है ना। और ऊंचे के रसों में भी जो है नीचे के रस होते हैं, माधुर्य रस है गोपियों का, तो वो भी शांत रस का भी अनुभव कभी वो करते हैं, कभी दास रस का अनुभव करते हैं, तो ये भी नहीं है। उनके नीचे के रस तो सब होते ही हैं, ऊपर के रसों में नीचे के रस होते ही हैं। हाँ, वो तो ऐसा है कि जब आप अगर मान लीजिए किसी का माधुर्य रस में संबंध है भगवान के साथ, तो वो वात्सल्य भाव में हो सकता है, लेकिन फिर आगे उसका जो है वो, क्योंकि उसका स्वरूप अगर उसमें है तो इन नीचे के रसों से वो ऊपर उठेगा, ठीक है। किसी का शांत रस में अगर संबंध है भगवान के साथ तो उसी में ही वो मतलब रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन किसी का संबंध दास रस में है तो शांत रस से ऊपर दास रस में फिर वो आएगा, बदलेगा उसका रस। स्वरूप नहीं बदलता, स्वरूप जो है अपना जो है, जब स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है, स्वरूप जागृत हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए वो स्वरूप है अपना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ है तो यही बताया जाता है कि जन्म जन्म कितने जन्मों तक उन्होंने मतलब ये किया, है ना, तो वो है ना इस तरह, यथम शताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन मायास्थितानाम नर दारकेण साकम विजयरु कृत पुण्य पुंजा। क्योंकि फिर तो भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा कि भगवान ही पक्षपात कर रहे हैं कि उनको मिल गए और इनको जो है मतलब अचिंत्य बने हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहे हो, इनको जो है ऐसे मिल गए, है ना। तो भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लगता है, है? तो उनके ही जो है मतलब कृत पुण्य पुंजा, तो कई जन्मों के पुण्य हैं। तो किसी व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य संचित हो जाते हैं तो वो जो है उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा है कि इस जीवन काल में तो वो बहुत मतलब दूषित थे, हिप्पी थे, क्या थे, है ना? तो प्रभुपाद, हमारा तो कुछ सही पुण्य था नहीं, हम कैसे भक्त बन गए? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तुम्हारा पुण्य पैदा कर दिया। प्रभुपाद ने मैंने तुम्हारा पुण्य पैदा कर दिया, आई हैव क्रिएटेड योर पुण्य। लेकिन प्रभुपाद ने पुण्य कैसे पैदा कर दिया? पुण्य प्रभुपाद ने जो पैदा किया वो कैसे किया कि आपके कई कई जन्मों में जगह जगह पुण्य मतलब बीच बीच में पड़े हुए थे, क्या किया? इकट्ठा कर दिया, वो इकट्ठा उदित हो गया। तो पड़ा हुआ कितने जन्मों का पुण्य पड़ा हुआ है आपके खाते में, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, है ना? तो किसी का मतलब वो पुण्य का उदय हो जाता है ना, साधु के दर्शन से, साधु संग से वो पुण्यों का उदय हो जाता है। तो पुण्य मतलब साधु की सेवा से भी मतलब पुण्य बनता है, वो अलग चीज है, लेकिन वो पुण्य आपके कितने कितने जन्मों में पड़े हुए हैं, कहीं इधर कुछ थोड़ा थोड़ा सा है, वो थोड़ा वो जो है सब इकट्ठा हो जाता है, तो आप जो है फिर उस संदेश को समझ पाते हैं, आप जो है आगे बढ़ पाते हैं भक्ति में। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने तुम्हारा पुण्य पैदा किया, है ना? तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के दर्शन से जो है उनका मतलब कहाँ कहाँ पुण्य छिपा हुआ था, पड़ा हुआ था इधर उधर, वो क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, है ना? तो वो पुण्य पुंज हो गया, ढेर बन गया पुण्य का, इतना बड़ा ढेर बन गया, उन्हें तो पड़ा था इधर उधर पड़ा था, ठीक है ना?
और मैं मौन का एक अर्थ है कि जलपा से ही बचना,
मौन, हाँ। अनर्थ अनर्थ अनर्थों से कैसे छूटे हैं, अनर्थों से कैसे छूटे हैं, अनर्थ है ये हमारे अंदर रजोगुण के कारण, रजोगुण तमोगुण नित्यम भागवत सेवया तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयशी चेत एत अनाविद्धम इष्टम सत्वे प्रसीदति। तो सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है, और रजोगुण तमोगुण के जो भाव हैं इनसे चित्त आविद्ध नहीं होता है। तो आपके अंदर इच्छा होती है प्रजल्पा करने की, रजोगुण का है, तमोगुण का भी भाव आता है, है ना? लेकिन चित्त इनसे आविद्ध नहीं होता है, आते हैं लेकिन आपके चित्त को वो भेद नहीं कर पाते, है ना? और चित्त आपका सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। तो नित्यम भागवत सेवया, तो अभी तो आपको जो है वही करना होगा, मतलब मौन और भक्ति। तो मौन का मतलब है आपके अंदर वाचो वेगम, वेग है, एक प्रजल्पा का वेग है जो आपके अंदर आ रहा है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सब वेग हैं जो आपके अंदर आ रहे हैं, है ना? तो आप इनको कंट्रोल करते हैं, उपशम, उपशम का भी मतलब है कंट्रोल करें, कंट्रोल करें और इसमें पॉजिटिव कार्यों में लगाएं, भक्ति के कार्यों में लगाएं। तो मौन का मतलब सुनना भी है कि आप सुन रहे हैं, है? उस समय आप बिल्कुल मौन हैं, तो आप सुनिए मौन, है ना? और नियमों का पालन करिए, और भक्ति की विधियों में आप खाली हमें बैठे रहिए। भक्ति की विधि है आपको कुछ कार्य करने के लिए, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, है ना? तो खाली मत बैठिए, तो खाली में आपके अनर्थ जो है वो निकलते रहेंगे। तो आप अर्थ में लगिए, तो अनर्थों का उपशमन होगा। तो ये जरूरी है कि आपको जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज, जो आपके जो मतलब कुछ विशेष कार्य होते हैं भक्ति में, उनमें आपको मतलब लगे रहना है, लगे रहिए, ये बहुत जरूरी है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चिये चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो ये जो है रजोगुण तमोगुण अनर्थ है ये, है ना? ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमन की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। गौनताई की जय। कृष्ण बलराम की जय हो। Thank you.